अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परमानंद के परम पावनीय क्षण हम लोग नित्य प्रति महापुरुषों के परम पुरुषार्थ का जो कार्य स्वरूप परिणाम श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर भवन जहां पर हम लोग सशरीर पूर्णतया अपने शरीर की शुद्धि का अनुभव करते हुए अपनी बुद्धि को परम परमात्मा में स्थित करने के लिए किसी न किसी ग्रंथ किसी न किसी ऋषिवाणी का आश्रय लेते हैं और ऐसा ये सुंदर स्वाध्याय ऐसा ये सुंदर जो है मांगलिक अमृत बेला का काल और उसमें भगवान की वाणी ऋषियों की वाणी का जो आस्वादन हमारे जीवन के परम लक्ष्य की ओर हमको ले जाता है इसके लिए उन महापुरुषों का भगवान का धन्यवाद जो हमारा मन हमारा तन इस ओर लगा हुआ है। वर्तमान में हमारा जो विषय है विचार का चिंतन का षोडश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता भगवान की निश्चित हुई वाणी अर्जुन के लिए ज्ञान स्वरूप अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम। तो हम लोगों ने भगवान की सुंदर वाणी का अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान और दम यज्ञ के ऊपर विचार किया जो हमारा कल यज्ञ के माध्यम से भगवान दैवी संपदा के गुण अर्जुन को समझाने की चेष्टा करते हैं कि एन के इन प्रकारेण क्योंकि जो है भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञमय जीवन साधक का जीवन वेदांत के पथिक का अध्यात्म के पथिक का भगवान के पथिक का जो जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए यथई धान समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा कि जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण समिधा को भस्मसात कर देती है उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन। हे अर्जुन ये ज्ञानाग्नि जो है ये हमारे संपूर्ण कर्मों का विनाश कर देती है। जैसे अग्नि कुछ भी रखती नहीं सब कुछ जला के भस्मीभूत कर देती है उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि हमारे संपूर्ण कर्म केवल कर्म ही नहीं कर्म के फलों का मुख्य चीज है कर्म के फल। कर्म खतरनाक नहीं है खतरनाक है कर्मों के फल क्योंकि फल ही हमको अपने आकर्षण में बांधते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम जो है सुख दुख रूपी कर्मों के फलों में नित्य निरंतर बंधन युक्त अपने आप को अनुभव करते हैं और परमात्मा का अनुभव करने की बजाय संसार का अनुभव करने लगते हैं। तो ये यज्ञमय जीवन इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों ने कहा भगवान ने कहा कि यज्ञ रूपी गुण को ग्रहण करो। जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण समिधा को भस्मीभूत कर देती है इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि यानी परमेश्वर चिंतन रूपी जो अग्नि है ये तुम्हारे जीवन के संपूर्ण कर्मों को संपूर्ण का मतलब जिसमें जो है आपके शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों आ जाते हैं क्योंकि दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि शुभ कर्म को पकड़ लें अशुभ कर्म को छोड़ दें तो ये संभव नहीं है। जैसे पक्षी का एक पर अगर आप काट दो और उस पक्षी से कहो कि उड़ो तो वो उड़ नहीं सकता जिस प्रकार से उस पक्षी को दोनों पर चाहिए इसी प्रकार से शुभ अशुभ दोनों ग्रहण करने पड़ेंगे और यह त्यागना है तो दोनों का त्याग करना पड़ेगा। एक से काम नहीं चलेगा कि आप सोचो कि हम पुण्य पुण्य रख लें और पाप को क्या कर दें जैसा हम लोग अक्सर सोचते हैं है ना। तो जब हम ज्ञान के मार्ग के अपने आप को पथिक किसका मानते हैं हैं ज्ञान मार्ग का पथिक मानते हैं कि नहीं और ज्ञान मार्ग क्या है अरे एक लाइन में बता दो ज्ञान मार्ग क्या है मेरे टीचर कहां भाग गए पीछे हैं ज्ञान मार्ग क्या है। हाँ ज्ञान मार्ग केवल इतना है परमेश्वर के अलावा कुछ भी दूसरा ये क्या है ये ज्ञान मार्ग है। बात समझ में आई कि नहीं आई ज्ञान का मार्ग किताबें रटना नहीं है कि आप सोचो कि बहुत सारी पुस्तकें हमने याद कर ली, ये ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये तो बुद्धि का खेल है। बुद्धि के संग खेलो, बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकों को गीता याद कर लो, वेद श्रुतियां याद कर लो, लेकिन ये ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग है इन सारे जो पुस्तकें आपने रटी हैं इनके माध्यम से उस सत्यता का बोध हमको हो जाए, उस परम सत्य का बोध हमको हो जाए। ये क्या है, यही ज्ञान मार्ग है और यही भक्ति मार्ग है, है ना। तो भजन किसके लिए है, पूजा उपासना किसके लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो बात सब जगह एक ही है, खाली कहने का ही भेद है। तो वास्तविकता में यज्ञमय जब हमारा जीवन हो जाता है तो हम अपने संपूर्ण पुण्य पाप सब को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ना हमको पुण्य चाहिए और ना, क्योंकि जितने आप शुभ कर्म करोगे उसका आपको पुण्य मिलेगा, या तो उससे परमेश्वर खरीद लो या संसार खरीद लो। संसार खरीदोगे तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, सुख और कोई दूसरा रास्ता यहां है ही नहीं। अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, दोनों आएंगे महाराज। और दोनों ना चाहते हुए भी आपको क्या करने पड़ेंगे है? अरे एक बात बताओ, सुख दुख है, मान लो कोई व्यक्ति जिंदगी भर बेचारा हर व्यापार में घाटा खाता रहा और घाटा खाते 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 आखिरी में महाराज बिस्तर में लेट गया। अब बिस्तर में लेटने के बाद उससे ना उठा जाता है, ना बैठा जाता, ना खाया जाता, ना पिया जाता है। और तभी जो है उसका बेटा जो है उसको खबर दे कि महाराज इस साल जो है हमको लाखों रुपए का क्या हुआ है। क्यों भाई, है कोई इस्तेमाल उसका, कोई इस्तेमाल नहीं महाराज। तो ये सुख दुख जो है बड़े विचित्र हैं, कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कब भोगना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए जो ज्ञानवान महापुरुष हैं वो सुख दुखों का दूर से ही क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। तो यज्ञमय जीवन कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, यज्ञ जो है हमारा गुण है। जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण संविधा को जला देती है, इसी प्रकार से आप रोज के रोज, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर का इकट्ठा करना, रोज के जितने भी हमारे कर्म हैं सबको भस्मीभूत करके प्रभु से रात में प्रार्थना करो कि प्रभु हमको ना पुण्य चाहिए और ना पाप चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। क्योंकि वह आनंद घन अगर उसकी प्राप्ति हो गई तो महाराज फिर और किसी चीज की आवश्यकता ना तो है और ना उसकी आवश्यकता है। उसके बाद जो है श्रीमद भगवत गीता में भगवान ने एक दैवी संपदा का गुण गिनाया, स्वाध्याय है ना, बड़ा सुंदर। स्वयं यज्ञ के स्वरूप का जब वर्णन भगवान ने चौथे अध्याय में किया तो स्वाध्याय को भी एक यज्ञ माना हमारे यहां, है ना। तो ये स्वाध्याय जो है बड़ी विचित्र चीज है जो समझने योग्य। दो तरीके का स्वाध्याय है, एक तो हम लोग जो पुस्तकें पढ़ते हैं, पठन पाठन जिसको कहा जाता है, वो स्वाध्याय है। और उसके बाद जो है दूसरा स्वाध्याय है उसी चीज को अपने अंतःकरण में चिंतन करना, है ना। जब तक आप उस चीज का स्वयं आस्वादन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे एकांत में बैठकर, तब तक उस चीज में आपको दृढ़ स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। इसीलिए जो है हनुमान जी के अंदर विशेषता देखी गई है ना, माता भगवती सीता की बुद्धि के हमारे 8 जो है गुण दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से जो श्रोता है या श्रवण करने वाला है तो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। स्वाध्याय को पहले तो हनुमान जी के माध्यम से समझो, माता सीता के संग जब वार्तालाप हुआ तो माता सीता ने जो है 8 गुण देखे हनुमान जी के अंदर, है ना। शुश्रूषा श्रवणम चैव, ग्रहणम धारणम तथा उहापोहोर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुण। ये 8 गुण होते हैं बुद्धि के अंदर। नंबर पहला शुश्रूषा, शुश्रूषा रूपी जो गुण है उसका मतलब होता है कि हमारे अंदर सुनने की जिज्ञासा हो। पहले तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जब आपके अंदर सुनने की तड़प होगी तो आप एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को बिल्कुल कैसे सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। जिस प्रकार से आपको कोई टेलीफोन नंबर बताता है और बहुत जरूरी टेलीफोन नंबर है तो फिर आप उसका एक एक नंबर बिल्कुल ध्यान से सुनते हो कि नहीं सुनते। और जिस फोन नंबर की आपको जरूरत ना हो, अगर कोई व्यक्ति उस फोन नंबर को बता रहा हो तो फिर आप क्या करते हो, एक कान से सुनते जाते हो, दूसरे कान से निकालते जाते हो। वो फोन नंबर का एक भी नंबर आपको याद नहीं होता, लेकिन जिसकी आपको आवश्यकता थी वो महाराज 10 डिजिट का फोन नंबर आपको एक ही बार में क्या हो गया, याद हो गया। जैसे यहां पर बैठे हुए मेरे ख्याल से जितने भी महानुभाव हैं सबको अपना फोन नंबर याद है कि नहीं है? हमारा फोन नंबर आपको याद है? क्यों? क्योंकि आपको हमारे फोन नंबर से मतलब नहीं है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? शुश्रूषा, जैसे आपको अपना फोन नंबर एक ही बार में क्या हो गया, याद हो गया, इसी प्रकार से जब आपके अंदर शास्त्र श्रवण की या अपने लक्ष्य भेदन के लिए बताए गए वाक्यों की श्रवण की, पहले तो लक्ष्य निर्धारण हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, शास्त्र सुनना लक्ष्य है या परमेश्वर लक्ष्य है, दो लक्ष्य है ना। केवल शास्त्र सुनने में ही आपको आनंद आता है तो वो तो लक्ष्य माना सांसारिक लक्ष्य हुआ, लेकिन जब शास्त्र श्रवण से परमेश्वर के लक्ष्य का वेदन करें, ब्रह्म तलक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम, जब आप प्रमाद रहित होकर शुश्रूषा करेंगे, है ना, पहले हमारे अंदर जागृति हो किसके लिए, शास्त्र श्रवण के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त करने, निज स्वरूप को समझने की, निज स्वरूप को प्राप्त करने की, तब हमारे अंदर शुश्रूषा, फिर आपके संदर से एक भी शब्द निकलने वाला नहीं, अंदर गूंजता रहेगा ना। तब उसके अंदर शुश्रूषा, पहले इच्छा हो और फिर श्रवणम हो, है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं गंभीर रूप से श्रवण करना। अब श्रवण कर लिया, बोले महाराज इसके बाद ग्रहणम, जो आपने श्रवण किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर लें, यानी जीवन में अपने बिल्कुल हमेशा के लिए उसको गुरु वाक्य की तरह जो है पक्का कर लेंगे बात। धारणम, फिर उसके बाद उस पे चलने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, धारणम, उसको धारण करने की पूर्णतया आपके अंदर लालना होनी चाहिए, यानी इच्छा होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि खाली सुनते जाओ, आगे लोग कहते हैं नहीं, कहीं जाओ महाराज सत्संग करने के लिए, बोले क्या सुनाओगे, कुछ नया सुनाओ। क्यों भाई, अध्यात्म में कुछ नया है? केवल दो ही चीजें हैं और सबसे पुराना तो एक शब्द है जिसका नाम है परमेश्वर है, अलावा परमेश्वर के तो और कोई दूसरी चीज नहीं है। तो अध्यात्म में कुछ नया नहीं होने वाला, नया सिर्फ इतना ही होने वाला है कि हमारे अंदर की धारणा शक्ति जागृत हुई अथवा नहीं हुई। यदि आपने अपनी धारणा को पक्का नहीं किया, यानी उस जो श्रवण किया है उसको धारण नहीं किया, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ये स्वाध्याय है ना, सुनते जाओ नया, फिर नया, कोई नया सुना, है ना, तो नया कुछ नहीं होने वाला। बस दो ही चीजें हैं, एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक संसार है, है ना। संसार, जीव, ब्रह्म, तीन के अलावा कोई चौथी चीज आपको सुनाने वाला नहीं है। या तो हमारा संसार प्राप्त होगा या परमेश्वर प्राप्त होगा, या तो आपका जीवत्व दृढ़ होगा या आपका जीवत्व पिघल करके परमेश्वरमय हो जाएगा। तो निर्णय आपको करना है कि आपकी धारणा शक्ति कहां पर स्थित है। तो धारण करें तो सबसे पहले श्रवण की इच्छा हो, है, सुनने की इच्छा हो, फिर उसके बाद जो है पूर्ण जोर लगाकर एक एक शब्द को सुना जाए और उसको ग्रहण किया जाए, फिर धारण किया जाए, और तत्पश्चात जो है एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहां ऊहापोह शब्द आपने सुना होगा। दो शब्द हैं उसमें, एक है ऊ, एक है अपोह। तर्क शक्ति, आपके अंदर अपने लक्ष्य के लिए तर्क शक्ति होनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निष्कपट प्रश्न किए, भगवान ने कहा अपने मन को निग्रह करो, सम जो है बहुत जरूरी है, दमन इंद्रियों का दमन करो, ये इंद्रियों का दमन बड़ा आवश्यक है। तो अर्जुन ने कहा महाराज आप कहते तो हैं मन को निग्रह करो, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती, ये निष्कपट प्रश्न कहलाता है। भगवान ने कहा परिप्रश्नेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, है ना, जो है निष्कपट भाव से समर्पित भाव से अपनी शंका को सामने रखो। अर्जुन ने सामने रख दिया, महाराज चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवद्रणम, है स्पष्ट कह दिया अर्जुन ने, वह तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सु दुष्करम, कोई भय नहीं है उसको कि भगवान के सामने क्यों बोलूं कैसे बोलूं, है भगवान के सामने कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। तो उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया महाराज आप कहते हो मन को बस में करना, मैं अर्जुन कहता मैं तो ये कहता हूं कि महाराज वायु को भी बस किया जा सकता है, लेकिन ये तो वायु से भी दुष्कर है, आप कहते हो इसको बस करो कैसे संभव है, संशय रखा, भगवान ने उसका समाधान किया, असंशयम महाबाहो, भगवान कहते मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, मुझे तुम्हारी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी हल है, उसका हल बताया फिर भगवान ने, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य, तो उसको अर्जुन ने ग्रहण किया, अभ्यास और वैराग्य के उपदेश को ग्रहण किया, है ना, ये स्वाध्याय कहलाता है, यानी उहा उहा की यानी तर्क की अवस्था, तर्क किस लिए, अपनी शंका के समाधान के लिए। वास्तविकता में देखा जाता है बहुत से लोग जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तब फिर जो है हम दूसरे का क्या करते हैं परीक्षण करते हैं, महाराज ये गलत है, दूसरे का कभी भी परीक्षण करने का अधिकार हमको नहीं है, वो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। दूसरे की परीक्षा हम लेने लगेंगे तो हमारा ज्ञान भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अपोह यानी जो संशय आपका निवृत्त हुआ है उसको निश्चय कर लेना। जैसे भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मन ऐसा चंचल है इसको कैसे निग्रह कहें करें, भगवान ने उसका उत्तर दिया और अर्जुन ने उसको निश्चय कर लिया कि हाँ अभ्यास और वैराग्य ही मेरे मन को शांत करने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, ये निश्चय कर लेना अपोह क्रिया कहलाती। तो उहापोह, उसके बाद जो स्थिति आती है ने? अर्थ जो है उहापोहोर्थ विज्ञानम, यानी किसी भी चीज के अर्थ को समझना। जब तक आप किसी चीज के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए वो चीज फलदायी नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज ना हो, अब उसको डायबिटीज की कोई दो तीन दवाएं बताए, अगले दिन उससे पूछो महाराज कल तुमको एक व्यक्ति डायबिटीज की दवाई बता रहा था तो क्या तुमको याद है, तो कहेगा ना जी मैं तो कल ही का कल क्या हो गया भूल गया। अब महाराज किसी व्यक्ति को भयंकर डायबिटीज हो और उससे वो दवाई बताई जाए, क्यों भाई वो भूल जाएगा है, साफ याद रहेंगी और उनको ढूंढना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं अर्थ खोजना, यानी हर जगह अपने अर्थ को खोजने की क्रिया, ये स्वाध्याय कहलाता है। यानी जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य रूपी अर्थ को हम जब अपने संपूर्ण ज्ञान जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें खोजना प्रारंभ कर देते हैं तो ये स्वाध्याय का एक रूप है। और इसी का जो अगला रूप है वो क्या है, वापोहोर्त विज्ञानम तत्व ज्ञानम, फिर उसमें से वो अपने तत्व को निकाल लेता है, ये स्वाध्याय कहलाता है। जब हम अपने तत्व को यानी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने तत्व को ग्रहण करते जाएं, जो हमारे मतलब की चीज है उसको ग्रहण करते जाओ, जैसे फल खरीद के आप लाते हो जब, तो महाराज जो फल वाला आपको फल देता है तो जो छिलका होता है उसके भी पैसे लेता है कि नहीं लेता, बल्कि किसी किसी फल में तो फल कम होता है और छिलका ज्यादा होता है ना, तो दाम आप छिलके के देते हो और खरीदते फल हो। अब आप मौसमी खरीदने जाओ, संतरा खरीदने जाओ और फल वाले से कहो कि महाराज छिलके तू निकाल ले और फल फल दे देगा, तो महाराज छिलके के भी दाम देने पड़ेंगे, यद्यपि आपने दाम दिए हैं लेकिन फिर भी आप जब उसको खाने बैठते हो तो क्या करते हो, छिलका निकाल कर फेंक देते हो या बेचने जाते हो? क्यों भाई? जाते बाजार में वापस करने की, भाई इसके भी दाम मैंने दिए, ये वापस लो। तो छिलका निकाल के आप बेदर्द होकर फेंक देते हैं और उस फल को ग्रहण कर लेते हैं जिसको आप खरीद के लाए। वैसी ही क्रिया महाराज यहां भी आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारा जो है, बहुत सारी चीजें कथानक के रूप में, उदाहरण के रूप में, तरह तरह के रूप में सुनाई जाती हैं। तो हमारा अगर वो लक्ष्य नहीं है, हैं, सांसारिक साधना यदि हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम उस तत्व की ओर ध्यान नहीं देंगे। अगर सांसारिक साधना यानी संसार को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जैसे दशरथ जी का चार पुत्र प्राप्त करने का लक्ष्य था तो उन्होंने महाराज श्रृंगी ऋषि के यज्ञ की ओर ध्यान दिया। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा है, परमेश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप फिर उस ओर ध्यान नहीं देंगे। आप उस छिलके को क्या कर देंगे? फेंक देंगे। इसको कहते हैं तत्व ग्रहण करना। ये श्रोता का लक्षण माना गया है। ये गुण हनुमान जी के अंदर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के अंदर देखे गए महाराज, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य माने गए है ना, क्योंकि उसी वेद के ज्ञान के द्वारा, कोई वेद दूसरे नहीं है, वही चार वेद हैं, उन्हीं चारों वेदों को हनुमान जी ने पढ़ा और उन्हीं चारों वेदों को रावण ने पढ़ा। दोनों में अंतर क्या है? एक ने उन्हीं वेदों के द्वारा संसार को पाया और एक ने उन्हीं वेदों के द्वारा राम को पाया। अब निर्णय आपको करना है कि आपका रास्ता हनुमान वाला है या रावण वाला है। वेद वही है, शास्त्र वही है, सारा ज्ञान वही है, कोई अंतर नहीं है दोनों के ज्ञान में। सब एक ही चीज पढ़ी है दोनों ने, गुरुकुल में दोनों ने एक ही शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन लक्ष्य में जमीन आसमान का अंतर है। एक को संसार का स्वामित्व अच्छा लगा, वो महाराज उसके आकर्षण में फंस गया, और एक को राम का आकर्षण अच्छा लगा, उसने तत्व को ग्रहण किया, बाकी सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। तो उनको राम की प्राप्ति हो गई। तो स्वाध्याय के द्वारा यही निर्णय किया जाता है ना। शंकराचार्य जी कहते नहीं है, किसी ने उनसे कहा कि ये जो उपनिषद है ये विद्या है, तो शंकराचार्य जी कहते नहीं, ये उपनिषद विद्या नहीं है, उपनिषद में जो कहा गया है वो विद्या है। साधारण उदाहरण से समझने की चेष्टा करें, जैसे हमारे यहां भारत में एक ट्रैफिक नियम है, कीप लेफ्ट, बाएं चलिए। क्या नियम है? बाएं चलो। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा प्राइमरी के स्कूल में रटाया जाता, कीप लेफ्ट, बाएं चलो, है ना, जिससे वो बड़े होकर भी ट्रैफिक नियम का क्या करें, पालन करें। अब एक बच्चे ने कीप लेफ्ट रट लिया, अब वो बेचारा होमवर्क दिया गया कि रट के सुबह इस वाक्य को तुम्हें याद होना चाहिए। अब वो जा तो रहा है राइट हैंड साइड में, हैं, और क्या बोलता जा रहा है? कीप लेफ्ट, कीप लेफ्ट, हैं, क्यों भाई? तो ट्रैफिक पुलिस वाला उससे आके पूछेगा, बोल तो तुम सही रहे हो लेकिन चल सही रहे हो कि गलत? तो विद्या क्या हुई? अगर हम उपनिषद पढ़ने के बाद भी अंतिम है, हैं, अंतिम ज्ञान का अंतिम द्वार है, इसके बाद फिर ज्ञान की सारी सीमाएं समाप्त हैं, तो इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भी अगर संसार का आकर्षण बचा रहा, संसार की मोहाशक्ति बची रही, तो फिर इस विद्या के पढ़ने का हमको क्या फायदा है ना? अरे भाई, इस विद्या के पढ़ने के बाद हमारे अंदर से सबसे बड़ा चमत्कार हमारे अंदर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि नहीं? जगत की आसक्ति बिल्कुल भी हमारे अंदर बचनी नहीं चाहिए। अरे यही करने तो आए हो यहां पे, अज्ञान नष्ट करने और ज्ञान को, अरे भाई, अविवेक रूपी मल को धोने और विवेक रूपी जो है प्रकाश को ग्रहण करने के लिए आए हो कि नहीं आए हो, कि कोई दूसरा काम है? हैं? अगर आपने धोबी के यहां कपड़ा दिया है सफेद रंग का और उसको वो काला करके ले आए तो क्या कहोगे भाई? हैं? बताओ। अगर हम ब्रह्म विद्या पढ़ लें, बोले कहां जा रहे हैं? बोले प्रेमपुरी में। क्या पढ़ने जाते हो? ब्रह्म विद्या पढ़ने। और ब्रह्म विद्या पढ़ी तब महाराज किसी ने कहा तुम्हारा जूता चोर ले गया है। लो जी सारा ब्रह्म ज्ञान कहां चला गया। मैं तो बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं लोगों को कि कभी अपने ज्ञान को टेस्ट करना कि आपकी जगत की आसक्ति खत्म हुई या नहीं खत्म हुई, अपना टेस्ट भी करना चाहिए कभी कभी, है ना। तो उसके लिए क्या करो, बाजार जाओ शाम को और एक बढ़िया सा 4-5 हजार रुपए का जूता या चप्पल जो भी आपको अच्छा लगता खरीद लाओ, और खरीद के बाबुलनाथ मंदिर चले जाओ और बिल्कुल नीचे जो गेट शुरू होता ना वहां पर उस चप्पल या जूते को छोड़ दो। क्या करो, अभी आपका और जूते की दोस्ती हुए कितनी देर हुई है, कितनी देर हुई, एक शाम बीती रात बीती है। सुबह सुबह जाओ और एक लोटे में जल लो और नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ के सामने पहुंच जाओ और उस जल को उनके ऊपर डालना प्रारंभ कर दो। बिल्कुल हृदय से बताओ, बिल्कुल हृदय से बताओ, कहां है तुम्हारा दिमाग है? बाबुलनाथ दिखाई दे रहे हैं या कुछ और दिखाई दे रहा है? जिससे अभी कल शाम को दोस्ती हुई है मात्र है, ये हमारी अवधारणा की अवस्था है। आप उस 1,000 रुपए 500 रुपए के अस्तित्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। साक्षात भगवान भोलेनाथ आपके समक्ष हैं, वो ना दिखाई दे करके 1,000 रुपए का चमड़ा दिखाई दे रहा है और झटपट दौड़ोगे महाराज वहां से कि देखें कोई ले तो नहीं गया, अगर मिल गया तो बोले महाराज भगवान ने बड़ी कृपा की। तुम्हारे ऊपर कृपा की या चप्पल के ऊपर की है? किसके ऊपर कृपा की, चप्पल के ऊपर की तुम्हारे ऊपर? वास्तविकता में हम अपने अविवेक को धोते ही नहीं है, पर सब कुछ लेते हैं। गीता भी याद हो जाएगी, उपनिषद भी याद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अविवेक तो वहीं का वहीं खड़ा है। हमारा अस्तित्व ही नहीं अभी समाप्त हो रहा, जो देहाभिमान है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है महाराज। और मीरा कहती है, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया हो, और कोई दवाई नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य स्वाध्याय का यह है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपनिषद नहीं विद्या है, उपनिषद में जो कहा गया है, हनुमान जी की तरह जिस दिन तुम क्या कर लोगे, उसके अर्थ को उसके तत्व को ग्रहण कर लोगे तो महाराज तुमको जीते जी राम मिल जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म मरने के बाद की गारंटी नहीं देता कि मरने के बाद आपको राम मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, अगली योनि मिलेगी। अगर जीवन मुक्त हो गए तो परम मुक्ति का आनंद लोगे, और यदि अगर मुक्ति नहीं मिली तो अगली योनि का आनंद लोगे। मरने के बाद कुछ नहीं होना, जो होना है जीते जी ही होना है। तो स्वाध्याय हमारे यहां जो है इसका श्रुतियों में विशेष रूप से जिस प्रकार से षोडश अध्याय हमारे यहां है, इसी प्रकार से उपनिषद में भी हमारे यहां तैत्तरीय श्रुति बहुत प्रसिद्ध। आप लोग शांति पाठ आदि के जो भी मंत्र बोलते हैं ज्यादातर जो है तैत्तरीय श्रुति से ही लिए गए हैं। और इस तैत्तरीय श्रुति में जो है शिक्षावल्ली है, भृगुवल्ली है और ब्रह्मानंदवल्ली है। तो शिक्षावल्ली यानी जो हम लोग यहां पर दैवी संपदा पढ़ रहे हैं, वास्तविकता में तैत्तरीय श्रुति में उसी दैवी संपदा को शिक्षावल्ली कहा गया है, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध वाक्य वेद के यानी उपनिषद के सुने हैं, सत्यम वद धर्मम चर आचार्य देवो भव पितृ देवो भव मातृ देवो भव, बहुत सारे वाक्य हैं जो शिक्षावल्ली के, सत्यमेव जयते हैं, ये आपने जो वाक्य सुने ये सब तैत्तरीय श्रुति के ही हैं। और तैत्तरीय श्रुति में एबीसीडी, ये जो आप सुन रहे हैं ना, क्या नाम उसका, दैवी संपदा, दैवी संपदा का मतलब अध्यात्म की एबीसीडी है ये, हाँ अंतिम नहीं है ये क्या है, हाँ अध्यात्म की एबीसीडी है। इसी प्रकार से शिक्षावल्ली जो है, प्रथम वल्ली कहते हैं बेल को है, तो पहली बेल की पहली जो है जो शाखा है वो शिक्षावल्ली है। और शिक्षावल्ली में यानी एबीसीडी में अध्यात्म में छोटे से प्रविष्ट हुए नूतन विद्यार्थी को ये समझाया जाता है। जरा सुनो, सबसे पहले तो इसके जो सुनाने जा रहा हूं उसके बाद के श्लोक में है जो है ये जो हमारे यहां बहुत सारी चीजें मानी गई हैं जिसमें हमको कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, और उसी में जो है ये वाक्य कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितभ्यम, यानी स्वाध्याय प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रवदितव्यम, कुशलान न प्रवदितव्यम, भूते ही न प्रवदितव्यम, तो बहुत सारी चीजें हैं। देव पित्र कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, बहुत सारी चीजों को गिनाया गया है। लेकिन जो यहां पर श्रुति कहती है ऋतम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, सत्यम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, तपश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा, दमश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा, समश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा, अग्नयश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा, अग्निहोत्रम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, अथितयश्च स्वाध्याय प्रवचने चा, मानुषम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, प्रजा चा स्वाध्याय प्रवचने चा, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने चा, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने चा, सत्यमिति सत्यवचारथीतरः, तप इति तपो नित्या पौरुषिष्ठिः, स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मोदगल्यः, तद्धि तपस्तद्धि तपः। ये मंत्र है नवम अनुवाक में तैतरी श्रुति के। तो इसमें उस विद्यार्थी को जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वेद की गया है उसको स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है। महाराज क्या समझाया गया? सबसे पहला वाक्य है ऋतम, ऋतम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, यानी इन कार्यों के करने में आपको स्वाध्याय प्रवचन का परित्याग नहीं करना। तो ऋतम शब्द है, ऋतम शब्द का हमारे यहां एक वेद है ऋग्वेद, आपने क्या नाम सुना है? हाँ, और वास्तविकता में नाम क्या है? ऋतवेद। ऋतवेद को जब व्याकरण के अनुसार संबंध किया गया तो वो ऋतवेद क्या बन गया? ऋग्वेद बन गया है, ता का गा हो गया ना, तो ऋग्वेद कहलाया। इसी प्रकार से ऋत, ऋत यानी ये गुरुओं के लिए आदेश है कि चाहे आप आत्मज्ञानी भी हो गए हों, जैसे भगवान कहते हैं ना कि मुझे कोई भी त्रिश्लोकी सुकिंचना, तीनों लोकों में मुझे कोई कार्य नहीं है लेकिन लोक संग्रह के लिए मैं ये लीला करता हूं, उसी प्रकार से यद्यपि गुरु को जो आचार्य है उसको वास्तविकता में अब स्वाध्याय प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवचन यानी सत्संग, और स्वाध्याय का मतलब अध्ययन अध्यापन। तो अध्ययन अध्यापन और सत्संग की वास्तविकता में उसको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस गुरु के लिए भी यहां पर श्रुति आदेश देती है ऋतम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, उसको भी कुछ ना कुछ स्वाध्याय प्रवचन आदि करना चाहिए। सत्यम चा स्वाध्याय प्रवचने, उसके बाद जो उससे छोटा सा नीचे स्तर आ जाता है, एक तो आत्मज्ञानी की अवस्था है तो आत्मज्ञानियों को भी सत्संग करते बोलते हैं देखा जाता है, यद्यपि उनको उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से प्यासा जो है कुएं के पास खड़ा नहीं रहता, वो तो पानी पी के क्या हो जाता है? चला जाता है। उसी प्रकार से जिसको सत्य की प्राप्ति हो गई, फिर महाराज उसको क्या जरूरत? ऋत के बाद फिर सत्य का नंबर आता है। ऋत यानी जो आत्मज्ञानी है, सत्य उनके लिए प्रयोग किया गया है जिन्होंने आत्मज्ञान में दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसे जो दृढ़ी हैं, ऐसे जो सत्य के ऊपर चलने वाले हैं, उनके लिए भी स्वाध्याय प्रवचन की आवश्यकता बताई गई है। उसके बाद तपस्वियों के लिए कहे तपस्या स्वाध्याय प्रवचने, यदि आप तपस्वी हैं, तपस्वी के जीवन में वास्तविकता में देखा जाता है सत्संग और प्रवचन की, स्वाध्याय की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन यहां पर कहते हैं तपस्वी को भी स्वाध्याय प्रवचन थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। दमश्चा, जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया उसको भी यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो है स्वाध्याय प्रवचन यानी सत्संग करना ही चाहिए। महाराज स्वाध्याय करना ही चाहिए। समस्या स्वाध्याय प्रवचन, मन की निग्रह कर लेने पर भी ये नियम लागू होता है। उसके बाद अग्नेश्च, अग्नेश मैंने जो हमारे तरह तरह के यज्ञ हैं, बड़े बड़े अग्निहोत्र कर्म करने वाले हैं, इसीलिए हमारे यहाँ यज्ञ भी होते हैं और प्रातःकालीन यज्ञ होता है और सायंकालीन सत्संग और प्रवचन आपने देखा होगा बड़े बड़े आयोजनों में। तो अग्नेश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा अग्निहोत्रम चा, जो अग्निहोत्र करने वाले हैं उनको भी सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। कर्मकांडी लोग इससे बचते हैं, कर्मकांड में ही आनंद लेते हैं, है ना। अगर आप जो है बाबुलनाथ मंदिर जाओ, जो वहां पूजा कराने वाले पंडित हैं उनसे कहो सत्संग सुनो आगे, उनका मन सत्संग में, उनका मन पूजा पाठ कराने में ही लगता है, यही रास्ते का भ्रमित होना है। तो अग्निहोत्रम चा स्वाध्याय प्रवचने चा अतिथयश्च, अतिथि की सेवा करते हुए, सब बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अतिथि सेवा में अक्सर सत्संग में आने वालों के बीच में ये बहाना सुना जाता, कल क्यों नहीं आए, बोले कल हमारे घर में कौन आ गए थे, मेहमान आ गए थे, है ना। तो मेहमान आ गए इसलिए हमने सत्संग को क्या कर दिया, सत्संग की छुट्टी कर दी, और भगवान भी कह दे चलो आज मेरी छुट्टी क्यों भाई, अगर भगवान तुम्हारे शरीर से छुट्टी लेके निकल जाए, जैसे आपने छुट्टी कर दी तो क्या होगा, है ना, तुम ही नहीं होगे इस दुनिया में। तो इसलिए अतिथि सेवा भी आवश्यक है, अतिथि देवो भव, और लेकिन महाराज उससे भी ज्यादा आवश्यक है स्वाध्याय प्रवचन सत्संग। मानुषम चा स्वाध्याय, यानी मानुषम का मतलब जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, ये मानुष है ना, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है इसको भी करते रहो, और संघ में स्वाध्याय प्रवचन आवश्यक है। प्रजा चा स्वाध्याय प्रवचने चा, है ना, जो हमारे यहाँ राजाओं को आदेश दिया गया है कि किस प्रकार से प्रजा की वृद्धि के लिए, प्रजा के लिए जीने पर भी उसको स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए, है इसमें जो है बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए, भले एक सेकंड के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। प्रजनश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा, गृहस्थ जीवन को जीते समय कहते हैं उन सब कार्यों को करते हुए भी आपको अपना मन स्वाध्याय प्रवचन में लगाना चाहिए। प्रजातिश्च, प्रजा के पालन में, प्रजा की वृद्धि में भी स्वाध्याय प्रवचन का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं सत्यम इति सत्यवचा रथीतरः, जो हमारे यहाँ रथीतर नाम के ऋषि हैं, सत्यवचा रथीतर के जो पुत्र हैं सत्यवचा, वो कहते हैं महाराज तप ही श्रेष्ठ है। उन्होंने क्या कहा, महाराज तप ही श्रेष्ठ है। सत्यम इति सत्यवचा रथीतरः, बोले उन्हें तप सबसे बड़ा क्या है, तप, तप इति तपो नित्या पौर सृष्टि, कहते हैं पौर सृष्टि जिनको हमारे यहाँ पौर शिष्ट यानी पुरु कह सकते हैं, या पुरु शिष्ट के पुत्र पौर शिष्टि कहलाएंगे। तो तपोनित्या नामक ऋषि जो हैं वो कहते हैं महाराज वेद का पढ़ना पढ़ाना ही यही तप है, तप कोई अलग चीज नहीं है। कहते हैं मौद्गल्य, मुद्गल के पुत्र नाग मुनि कहते हैं क्योंकि तप कोई और चीज नहीं, इनको पढ़ना सुनना और सुनाना, इसका परिणाम ये होगा कि तुम कभी भी सत्य से अलग नहीं होगे, इसीलिए इसको तप माना गया। स्वाध्याय प्रवचन को उन्होंने मौद्गल्य ऋषि कहते हैं कि ये तप है, यही वास्तविकता में तप है, कोई दूसरा तप नहीं है, है ना, क्योंकि इसका मतलब हम अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये तप कहलाता है महाराज, है ना। स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय का मतलब, स्वाध्याय का मतलब, अरे भाई दो चीजें हैं ना, स्व और अध्ययन, तो स्व का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। तो पुस्तकों के माध्यम से करें, सत्संग के माध्यम से करें, और उसके बाद एकांत में बैठकर स्वयं की बुद्धि के माध्यम से करें, है ना, क्योंकि जब तक आपकी अपनी बुद्धि उस चीज का आस्वादन नहीं करेगी, निर्णय नहीं करेगी, निश्चय नहीं करेगी, जो कुछ भी आपसे ने सुना है वो केवल सुना का सुना ही रह जाएगा, है ना। मुद्गल के पुत्र नाग मुनि का ये प्रमाणित वचन है महाराज, यही तप है, यही तप है, यही तप है, कोई दूसरा तप नहीं है, क्योंकि असली तपस्या ये है कि हम हर स्थिति में, जो यहां पर सारी स्थितियां गिनाई गई हैं, कि कोई भी परिस्थिति हो, प्रजा पालन हो, प्रजा वृद्धि हो, गृहस्थ जीवन हो या सांसारिक कार्य हो, अतिथि सेवा हो, सब कुछ हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना हटें, यानी स्वाध्याय प्रवचन का परित्याग ना करें, सत्संग का परित्याग ना करें। अपने उस क्षण भर के सत्संग का आप ध्यान अगर रख रहे हैं तो ये तप कहलाता है, क्योंकि बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे ऊपर जरा सा भी जगत का भार आ जाता है या जगत का विशेष कार्य आ जाता है, उसी दिन हम सबसे पहले तिलांजलि किसको देते हैं? सत्संग को देते हैं। क्यों भाई, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हम आपको रात के 2 बजे सत्संग के लिए बुलाएं, आओगे? हैं? अच्छा रात के 2 बजे आपका पेमेंट होना, वो लेने जाओगे? तो प्रेम किससे, प्रेम किससे, नोट से या भगवान से? ये है, ये स्थिति है। तो इसीलिए यहां पर ये शिक्षा वल्ली है, हमारा ABCD यही है अध्यात्म की, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बताए जा रहे हैं। मुद्गल के जो पुत्र हैं नाग मुनि, उनका कहना यही है कि तप है ये, क्योंकि अपनी स्थिति से किसी भी परिस्थिति में, संसार की किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से विचलित ना होना, यही तप है। बाकी तो कष्ट, अभी आप जो है तप भी दैवी संपदा का एक रूप है और उसके ऊपर भी हम लोग विस्तृत जो है चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये समझने वाली चीजें है ना, क्योंकि बहुत सी चीजों में हमारे यहां देखो, आपको बताया था ना अभी, सत्यान ना प्रमदितव्यम, धर्मान ना प्रमदितव्यम, धर्म में कभी प्रमाद मत करो, सत्य में कभी प्रमाद मत करो, कुशलान ना प्रमदितव्यम, यानी किसी भी प्रकार से सांसारिक जो सुंदर कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उसको करने में कभी प्रमाद मत करो, भूते ही ना प्रमदितव्यम, यानी जो हमारे जो जिनको हम लोग जो है सांसारिकता में पितृ या दूसरे जो है देवताओं को प्रसन्न करने की क्रिया करते हैं, उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन में कभी जो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ काराभ्याम न प्रमदितव्यम, भूतों की सेवा में, देवों की सेवा में, पितरों की सेवा में, इनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां विचर्षणम शब्द प्रयोग किया गया, हमारा जो हमारे अंदर कैसा इस भाव रहना चाहिए, शरीरम में विचर्षणम। और रोज आप लोग शांति पाठ में इसीलिए रोज आप बोलते हैं, है? विषेम देव हितम यदायो, हमको जो भी आयु मिली है वो सब कहां चली जाए, देव हित में, व्यसेम देव हितम यदायु, हमको जो भी आयु के रूप में समय मिला है वो सब देव कार्य में ही लग जाए। यही हम प्रभु से रोज नित्य प्रति शांति पाठ के जो आप मंत्र बोलते हैं, इनमें यही सब तो प्रार्थना की गई है भगवान से कि हमको कभी इन सब चीजों में प्रमाद ना हो। अगर इनमें प्रमाद होगा तो फिर महाराज सभा हमारा पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना क्या हो जाएगा। हाँ, ये सब शिक्षा वल्ली में आता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब शिक्षा वल्ली की ABCD है महाराज। तो पुनः जो है क्या क्या हो गया, अभयम सत्तु संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। कल हम लोग जो है तप के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।